सूरज की रोशनी में चांद चांद रहता है, सूरज खत्म कर दीजिए चांद खत्म हो जाएगा। हर चीज़ कायनात की आपको दिखाती है इस चीज़ के अंदर। तो अल्लाह सुबहाना ताला ने अपनी ज़ात पे इस चीज़ को लेकर कहा कि मैं तुम्हें इस चीज़ का बताता हूँ। फिर आयत के अगले हिस्से में मोमिन के सीने की बात है, ये मांगिए कि अल्लाह मेरा दिल साफ कर दे। अगर आपने आयत के लफ्ज़ों को देखा है, मैंने अलग से भी पेश नहीं किया कि फिर टाइम बहुत लगता है, लेकिन मसलु नूर ही का मिशकात। अब इसकी इतनी मुख्तलिफ तफसीरें हैं कि मिशकात से मुराद मोमिन का ईमान, फिर दिल सीना। इसकी तफसीर सुन लीजिए जाकर, हर सेट में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ बस इतना कह लीजिए, दिल गंदा हो तो ये नूर अंदर नहीं आता। अल्लाह सुबहाना ताला इंसान के दिल में अपनी मोहब्बत का परताव तब डालते हैं जब दिल साफ हो। आपका ड्राइंग रूम गंदा हो तो मेहमान को बिठाएंगे, बेडरूम में गंद पड़ा हो तो किसी को बिठाएंगे, तो क्या मैं और आप इस गंदे दिल में अल्लाह के प्यार को बिठाएंगे? फिर इससे लोगों ने क्या कुछ दिया? हकीकत है कि इस एक कायद से हर सोच, हर मसलक, हर अकीदे वाले ने अपने मतलब की चीजें ले ली। सीधी सिंपल समझने की आयत, इस पे ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए। लोगों ने इसमें से वहदत वजूद निकाला, लोगों ने इसमें से हलूल का नजरिया निकाला, लोगों ने इसमें से बैठे हैं तसव्वुरे जाना किए हुए, अपने बुजुर्ग साहब की तस्वीर दिल में लगाकर उनकी बातें करना जाना, सब फाड़ दीजिए। मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूंगी कि इस आयत की तफसीर आप हर एक से सुने, सिर्फ वही जो कुरान सुन्नत के साथ जुड़े हुए हैं। वरना याद रखिए कि इतना भटके लोग कि इसके साथ उन्होंने मुंह की खाई है। जरूरत है इस बात की कि अल्लाह सुबहाना ताला के इस नूर के लफ्ज को अपनी जिंदगी में रखा जाए। आप देखिए कि सूरज 1,86,000 मील, 86,000 माइल पर सेकंड की रफ्तार से एक शुआ निकलती है, फिर आपकी मेरी आंख के पर्दे पे पड़ती है, और दिमाग के अंदर जो एक बुर्जा लगा हुआ है उसकी वजह से फिर हम देखते हैं। तो जब अल्लाह के कुरान का ये नूर, ये जो कुरान इस वक्त भी आपके मेरे सामने है ना, और जिसकी दावत आपको देते हैं नूरुल कुरान वाले, मुझे तो ये तारुफ ही बड़ा पसंद है। नूरुल कुरान क्या है कि इनलाइटन द हार्ट्स विद द नूर ऑफ अल कुरान। कोई घर खाली ना रहे, कोई घर अंधेरों में ना रहे, कोई दिल अंधेरों में ना रहे, किसी की जवानी दागदार ना हो जाए, किसी के माल में कोई हराम की आमेजिश ना हो जाए, और ये कुरान की रोशनी से होगा। आप इस रोशनी को लेकर निकलिए, घर घर जाइए, लोगों को खुद दिखेंगी उनकी बुराइयां, वो खुद ही सफाई कर लेंगे। आप में सफाई करने चल पड़ते हैं ना, उसमें लोग माइंड करते हैं। कुरान खोल दीजिए, दिए से दिया जला दीजिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ मैं यही देखती हूँ, वही लोग आगे बढ़ रहे हैं जो माशाल्लाह रोशनी के अलम्बरदार बने हैं। आपने ओलंपिक का नाम सुना होगा, वो शम्मा नहीं बुझने देते, एक के बाद दूसरा जलाता जाता है। वो उनके ख्याल में उनका खुदा है, यानी फायर वर्शिपिंग का एक पीछे से इसके साथ ताल्लुक होता है। लेकिन इस वक्त आपका मेरा काम क्या है? आज के इन अंधेरों में रोशनी का पैगाम ले आइए। आपको मुझे इस चीज़ को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, ये दुआओं में दुआ कीजिए कि हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, आपको मुझे समझ आ जाए इस बात की। क्योंकि जब आपने आपको बंदा है मोमिन के ज़मन में लाते हैं ना, तो ये जो मिसाल है ना, तो अल्लाह का नूरे हिदायत जो मोमिन के कल्ब में फितरी तौर पे रखा, नूरे फितरत की सूरत में का मिशकात है ये। और इसी तरह से इसमें मिशकात का लफ्ज जो आता है, आप देखें तो मखसूस जगह जो दीवार में चिराग रखने के लिए बनाया जाता है, एक तरफ से थोड़ी सी खुली होती है, जिसको वो चिमची या चिराग दान भी कहते हैं। मिसबाह का लफ्ज है सुबह से, स्वादबाहा, बड़ा चिराग जो खूब रोशनी दे। जुजाज, शीशे का बना हुआ फानूस या ग्लोब जिसमें चिराग रखा जाता है। अपने दिलों को जुजाज बनाइए। हमने इस दौरे कुरान के दौरान अपने दिल क्रिस्टल क्लियर साफ करने हैं, खुद ढूंढ के सफाई करें, दूसरों से मत कराएं। दूसरे करेंगे तो तोड़ भी देते हैं, हमारा दिल टूट जाता है लोगों की बात सुन के। तनकीद अच्छी नहीं लगती, फ्रेजल होता है हमारा दिल। और शीशा आपको पता है, नाजुक से नाजुक और पक्के से पक्का। आप आजमा के देख लीजिए, ये शीशे की खूबियां, ट्रांसपेरेंसी भी है, सख्ती भी है। मोमिन का दिल ऐसा ही होता है। फिर कौकबुन दुर्रियुन, वो शीशा जिसमें चिराग है, सितारे की तरह चमकता है। अगर ये मैला होगा तो रोशनी में इजाफे की बजाय धुआं देगा। और मुबारकतिन कसीरुल मुनाफे, बहुत से फायदे देने वाला। और फिर वो दरख्त, ला शर्कियतम वला गर्बिया, शजरे मुबारक यानी जैतून का दरख्त, जो आज भी जैतून का तेल सबसे महंगा है। अल्लाह ताला ने इस आयत में बताना क्या चाहा, ये चंद जुमलों में सुन लीजिए, कि जिस मोमिन के दिल में अल्लाह ताला का नूरे हिदायत दाखिल हो जाता है, लिखिए अल्लाह नहीं दाखिल होता, शिर्क होगा, अल्लाह का नूरे हिदायत दाखिल हो जाता है, और मोमिन इसको ईमान की कुव्वत से अपने दिल की जीनत बना लेता है, तो इससे उसके दिल की कैफियत ये होती है जैसे एक ताक हो, और इससे मुराद मोमिन का दिल है। ये दिल चिराग रखने के लिए एक ताक या चिराग दान की मानित होता है। चिराग से जब बहुत ज्यादा रोशनी लेनी होती है ना, तो उसको बुलंद जगह पे रखते हैं ताकि पूरे घर में रोशनी फैल जाए। इंसान के अंदर दिल ही वो जगह है जहां रोशनी हो तो उसके सारे जाहिर बातन में फैलती है, फिर आंखें नुरानी होती हैं, फिर हाथ कान जुबान नुरानी होती है। और रोशनी को फैलाने के लिए बाहर एक शीशा लगा देते हैं, जैसे आपके ये फानूस होते हैं, छन छन के रोशनी आती है और महफूज भी हो जाती है ना। चिराग की लो हवाओं के झोंकों से मुंतशिर नहीं होती और एक ही जगह रहती है। इंसान का दिल भी जब तक ईमान के फैज से महरूम रहता है, नूरे हिदायत उसके दिल में दाखिल नहीं होता। डामा डोल, वसवसे, शैतानी ख्यालात, ख्वाहिशात का दबाव, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस्तराब, परेशानियां, एक दफा आप ईमान से उसको जोड़ दे, नूरुन अला नूर। दुआ कीजिए हमारे दिल के अंदर के ईमान इस नूर के साथ मिलकर अपने और दूसरों से फायदा लेने वाले बन जाए, और वुस्सत कल्बी सारी चीजों से पाक रहकर अपने आप को आगे रखना है। अब ये सारा कुछ तो पढ़ लिया अभी तक, आगे क्या है? खत्म होगी बात? नहीं, चंद बातें जो आज आपको मुझे इस सारे मजमून में से ये चीजें पढ़ने के बाद समझ में आती हैं। पहली बात क्या है कि जैसे रात के अंधेरे में रोशनी के बगैर सफर दुश्वार होता है, इसी तरह नूर के बगैर सिराते मुस्तकीम पर जमे रहना भी मुश्किल है। तो आज याद कीजिए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो आप अगर चाहते हैं ना कि आपकी ये दुआ कबूल हो, तो आपको कुरान के नूर से जुड़ना होगा। मोमिन का कल्ब अल्लाह ताला के नूर से जब मुनव्वर होता है ना, तो ईमान से लबरेज होता है, और अल्लाह के रसूल और मोमिन बंदों के दिलों में मौजूद मारफत इलाही नूर है। मोमिन के दिल के अंदर हक के नूर से सारा माहौल रोशन होता है। एक चिराग काफी होता है। आप में से हर एक जो इस वक्त भी सुन रहा है और जो बाद में भी सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला, आप में से हर एक अगर एक चिराग बन जाए तो आप देखिए कि इंसानियत के अंधेरे दूर होंगे कि नहीं होंगे। बिल्कुल होंगे। ख्वाहिश भी कीजिए और दुआ भी कीजिए कि अल्लाह हमें अंधेरों में रोशनी का एक जुगनू ही बना दे। और फिर इल्म और तदब्बुर की बतदरीज सीढ़ियां चढ़ते हुए मोमिन का दिल नूर से लबरेज हो जाता है। अब एक सवाल लिखिए जो बहुत ही अहम है। देखिए, आप सब के साथ इतनी बातें करने के बाद मैं एक बहुत क्रिटिकल बात करने लगी हूँ। ये सिर्फ उसको फायदा देगी जो खुद इख्तसाबी की नियत से इस वक्त सुन रहा है, जिसकी बसीरत की आंख खुल गई है। तो नेक्स्ट शॉर्ट टॉपिक जो इसी के अंडर है मेरा, वो क्या है? बातनी बसीरत की रोशनी में पिछले रमजान से अब तक। आजकल यादें बहुत ताजा हो रही हैं। पिछला रमजान जब हम नहीं अभी आए थे, और उससे पहले के जो दिन थे, जो कैफियत थी, आज उसमें क्या कमी आई, क्या बेशी हुई, थोड़ी सी बात करूंगी। ऐसे लगता है कि सूरत रोम की आयत नंबर 41, जहर अल फसाद फिल बर वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन्नास बिऐदिन्नास लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। जरा सी से एक एक लफ्ज पे गौर कीजिए और आप बताइएगा कि क्या ये 1400 साल पहले की आयत है या आज की। खुश्की और तरी में फसाद बर्पा हो गया लोगों के अपने हाथों की कमाई से, ताकि मजा चखाए इनको इनके बाज आमाल का, शायद कि वो बाज आ जाए। ये आयत अल्लाह के नबी पे नाजिल हुई थी, लेकिन अगर आज देखें पिछले साल से अब तक के जो दुनिया के हालात हैं, अगर आप उसकी बातनी हकीकत जानना चाहते हैं, तो आपको इस आयत में दिख रही है। जहर अल फसाद फिल बर्री वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन्नास। अल्लाह सुभान ताला ने बंदे को पैदा किया, वो बंदे के हालात से वाकिफ है। वो खुद ही कहते हैं अला यालमु मन खलक, क्या वही ना जाने जिसने पैदा किया। बंदा खुद अपने आप को इतना नहीं जानता जितना अल्लाह उसको जानता है। हमारा गुज़श्ता रमजान जैसा गुजरा, वैसा तो 1400 साल की तारीख में कोई एक रमजान ना गुजरा होगा। अनोखा रमजान था। मस्जिदों पर ताले पड़ गए और इज्तमाई इबादत जो होती ही इज्तमाईत में है, वो भी इनफरादी तौर पे करनी पड़ी, जिसमें 5 वक्त की नमाज, जुमा, जुमा तो इनफरादी नमाज ही नहीं है, आपको पता है कि मस्जिद में पढ़ें जुमा तो 2 रकत, घर में पढ़ेंगे तो 4 फर्ज जोहर के। तो इज्तमाही इबादत जो जुमे की सूरत में थी वो भी लोगों को मस्जिदों में नसीब ना हुई। ईद की नमाज वो दिन याद कीजिए, क्या दिल पे बोझ था जब ईद की नमाज आप लोगों ने घरों में चंद लोगों में पढ़ी, दो हमसाए मिलके नहीं पढ़ सकते, वो भी तनहा पढ़ी। हरम हमारी जिंदगी तो क्या, आप पीछे जाकर देख लीजिए आपके माँ बाप और आपकी नानी दादी की जिंदगियों में भी कभी इस तरह वीरान नहीं दिखा जो हमें तब से लेके अब तक दिखा। तो क्या ये चीजें एक साहिबे बसीरत शख्स जिसको वाकई नूरे बसीरत मिल गया उसके सोचने की नहीं है? आप नहीं सोचते? आपके मेरे लिए इसमें गौर का एक नुक्ता है। देखिए दुनिया जो कहती है, जो जाहरी हालात हैं वो तो हम सभी को पता है, एक बीमारी ने हम सबको रोक दिया, उसको पहले कोरोना कहते थे, अब उसके कुछ और भी मुख्तलिफ किस्म के जरासीम निकल आए, ये सब सच है। इसके ऊपर इस वक्त ना बात करनी है ना बहस करनी है, हम तो आज इस वक्त बात करने लगे हैं इस सारी सिचुएशन जिससे तकरीबन 1 साल से पूरी दुनिया गुजर रही है, इसकी बातनी वजह क्या है? अभी बात हो रही है ना नूर की, तो जब रोशनी आती है ना तो फिर वो भी दिखता है जो आम तौर पे नहीं दिखता। बिल्कुल इसी तरह से हर चीज के दो असबाब होते हैं, एक जाहरी और एक बातनी। जाहरी असबाब जो होते हैं ना वो हैं जो हमें सबको पता है, अखबारों वालों को भी पता है, टीवी वालों को भी पता है, झूठी सच्ची खबरों और सच्ची बातें करने वालों को भी पता है। लेकिन हम देखेंगे इस वक्त कि जब भी दुनिया में कोई ऐसे हालात आते हैं तो उसकी वजह क्या होती है। तो लिखिए कि अजाब की दो सूरतें होती हैं, एक होती है जिस्मानी तकालीफ की सूरत में, मसलन बीमारियां आ गईं, बुखार, नजला, जुकाम, नमूनिया, डायरिया, दर्द सर, आंधी, तूफान, सैलाब, सुनामी, यानी हर मुमकिन सूरत जिसको आप दुनिया में कहते हैं जो नजर आती है। और अल्लाह फरमाते हैं मा सब अमी मुसीबत फबीमा कसबत अईदीकुम, तुम्हें जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे अपने हाथों का किया धरा। इसमें A to Z तकलीफ लिखी है, बच्चों का बिगड़ना, शौहरों की बदनजरी, बीवियों की बेवफाई, यानी हर वो तकलीफ जिसको आप देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि ये तो गड़बड़ है। ये है अजाब की एक सूरत, जिस्मानी तकलीफें, बीमारियां, परेशानियां, दुख, महंगाई, करप्शन, A to Z लिख रहे सब। लेकिन एक दूसरी सूरत है जो बड़ी तकलीफ दे, और उसके लिए जिसको नूरे बसीरत मिल जाए, जिसके अंदर रोशनी हो जाए और जिसके अंदर ईमान हो। अल्लाह नूरु समावाती वल अर्द मसलु नूर ही का मिश्कात, जब अंदर ईमान आता है और ईमान के ग्लासेस लगते हैं तो जो अजाब नाकाबिले बर्दाश्त होता है वो होता है दीन के नाम पर कोई मुश्किल आ जाना। कुरान से कह दूं तो असहाबे बुरूज, सूरत बुरूज पूरी इसी पे है, असहाबे कहफ कैसे जान बचा कर ईमान बचा कर चले गए। तो दीन पर जब किसी के मुसीबत आ जाए तो ये अजाब की वो किस्म होती है, वक्त का नबी तो फौरन बता देता है लेकिन आज आप मैं नहीं कह सकते कुछ भी, समझने के लिए कोशिश कीजिए। जब अल्लाह किसी चुनी हुई कौम उम्मते मुस्लिमा और इसी तरह से दूसरों को ऐसी किसी चीज में लेता है तो समझ लीजिए कि अल्लाह उसका दीन बिगाड़ देता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा होता है कि तुम दीन के काबिल नहीं रहे, तुम दीन के लायक नहीं हो। और ये कब होता है? जब कुल्ली तौर पर दीन से एराज कर लिया जाए, रूगर्दानी कर ली जाए, मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान रह जाएं, अलल एलान दीन से रूगर्दानी इख्तियार कर लें, कलामुल्ला की सिर्फ तिलावत रह जाए और अमल ना हो, और लोग बड़ी से बड़ी खराबी देख कर भी खामोश रहें, तो ऐसे मौके पर अल्लाह सुबहाना ताला उसके ऊपर दीन की आजमाइश लाता है, उसका दीन खतरों में आता है। कभी तो अल्लाह हामिले कुरान कौम को गैर मुस्लिमों के हाथों रुसवा करता है, जैसे बुख्त नसर से बनी इसराइल को पिटवाया था, टीटस के हाथों बैतुल मकदस की ईंट से ईंट बजा दी थी, खून की नदियां बहा दी। बैतुल मकदस जो अल्लाह की इबादत के लिए बना था उसमें खून की नदियां जारी हो चुकी, और यहूद जो उस वक्त की मुस्लिम कौम थी उसे रोम से आए हुए मुशरिकों से पिटवा दिया। ये सब कहाँ है? आइए जरा बनी इसराइल की तारीख के आईने में आज के इस हालात को समझते हैं। ना ये कोई फतवा है, ना ये कोई तबसरा है, ना ये कोई क्रिटिसिज्म है, और ना ये बात हर एक के लिए है, ये बात सिर्फ उसके लिए है जिसका नूरे बसीरत आ गया। लामा इकबाल कहा करते थे, खुदाया मेरा नूरे बसीरत आम कर दे, देखा है जो मैंने वो औरों को भी दिखला दे। तो याद रखिए, ये बातें न्यूज़ चैनल्स और सिर्फ बातें करने वालों को नहीं समझ आ सकती। वो जाहरी बात करेंगे लेकिन बातनी सबब इसके पीछे क्या है? नोट कीजिए सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 4 से 9। वक़दैना इला बनी इसराइल फिल किताब लतुफ्सिदुन्न फिल अर्दी मर्रतैन मर्रतैन वलतअलुन्न उलुवन कबीरा। मैं इसका तर्जमा पढ़ूंगी और आपका जहन साथ साथ चलेगा कि अल्लाह ताला ये कब की बात करते हैं। फरमाया, फिर हमने अपनी किताब में बनी इसराइल को इस बात पर भी मुतनब्बिह कर दिया, यानी वॉर्न कर दिया था कि तुम दो मर्तबा जमीन में फसाद अजीम बरपा करोगे और बड़ी सरकशी दिखाओगे। आखिरकार जब इनमें से पहली सरकशी का मौका आया तो ऐ बनी इसराइल, हमने तुम्हारे मुकाबले पर ऐसे बंदे उठाए जो नहायत जोरावर थे और वो तुम्हारे मुल्क में घुस कर हर तरफ फैल गए। ये एक वादा था जिसे पूरा होकर ही रहना था। इसके बाद हमने तुम्हें इन पर गलबे का मौका दे दिया और तुम्हें माल और औलाद से मदद दी और तुम्हारी तादाद पहले से बढ़ा दी, यानी कुछ दिन तुम्हें अच्छे दे दिए बीच में बढ़ोतरी के। देखो, तुमने भलाई की तो तुम्हारे अपने ही लिए भलाई थी और बुराई की तो वो तुम्हारी अपनी जात के लिए बुराई साबित हुई। फिर जब दूसरे वादे का वक्त आया तो हमने दूसरे दुश्मनों को तुम पर मुसल्लत किया ताकि वो तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें और मस्जिद यानी बैतुल मकदस में इस तरह घुस जाए जिस तरह पहले दुश्मन घुसे थे और जिस चीज पर इनका हाथ पड़े इसे तबाह करके रख दें। हो सकता है अब तुम्हारा रब तुम पर रहम करे, लेकिन अगर तुमने फिर अपनी साबिक रविश यानी पुराने तौर तरीकों को दोहराया एआदा किया तो हम भी अपनी सजा को दोहराएंगे और काफिर नेमत यानी नाशुक्रे लोगों के लिए हमने जहन्नम को कैदखाना बना रखा है। हकीकत यह कि ये कुरान वो राह दिखाता है जो बिल्कुल सीधी है। जो लोग इसे मानकर भले काम करने लगे इन्हें ये बिशारत देता है कि इनके लिए बड़ा अजर है। आपको इन आयतों को पढ़कर कुछ समझ आया? कोई इशारे इसमें आपको अल्लाह ताला की तरफ से मिले? बनी इसराइल की तारीख का वो लंबा और तवील बाब, दो दफा इनको पकड़ाया गया। अल्लाह ताला ने इस जमीन पर एक माजी की मुसलमान कौम को दो मर्तबा पकड़ा और उनकी मस्जिदें गैरों के हाथों में आ गई थी। मस्जिद तुम्हारी, कब्जा उनका, और दुश्मन तुम्हारे चेहरे पलट देगा। फजासु खिलालत दियार, घर तुम्हारे और कानून उनके। यानी अल्लाह सुबहाना ताला जब उम्मत मुस्लिमा को किसी भी मुश्किल में डालता है तो उनके लिए कहीं भी सुकून नहीं होता। जब कौमें अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों की कदर ना करें तो कभी कभी अल्लाह ताला ऐसे करता है जो इन आयतों में, और वो क्या है कि अल्लाह ताला मस्जिदों को बंद कर देता है, दीनी इदारों को बंद कर देता है। मुसलमान दुश्मनों ने वहां क्या था, आप कुरान के आयतों को जाकर आज पढ़ें। मैंने तो आपको पहले भी कहा कि इस पे भी गौर कर लीजिए। आप सूरत हदीद की उन आयतों पे गौर करते हुए अगर ये आयतें आज घर जाकर खोलें और इसको पढ़ें तो आपको एक एक लफ्ज में आज के हालात की तस्वीर कशी दिखेगी। वहां क्या था? फजासु खिलालत दियार, वो तुम्हारे घरों में आ गए, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दी, और साथ ही साथ अल्लाह ताला ने जो कहा कि वो तुम्हारे चेहरे बिगाड़ देंगे, उन्होंने चेहरे बिगाड़ दिए, आज चेहरे बंद कर दिए गए। जब मुसलमान अल्लाह की पकड़ का शिकार होते हैं और फिर पूरी दुनिया पे अल्लाह का गजब आता है, याद रखिए आलमगीर जंग कहते हैं ना आप, वर्ल्ड वॉर इंटरनेशनल का लफ्ज, उसमें फिर मुस्लिम गैर मुस्लिम का फर्क मिट जाता है। हदीस में आता है कि एक वक्त आएगा कि अल्लाह ताला इतना नाराज होगा कि अच्छे लोग भी जो काम करेंगे अल्लाह उससे भी खुश नहीं होगा। फैजा जावाद अल आखिरा, जब नाम का मुसलमान रह जाए, तौरात को जंतर मंतर की किताब बना दे, गुनाहों में डूबा रहे, मजमुई दीन को छोड़कर एक छोटे से टुकड़े पर राजी हो जाए, फिरका वारियत और गिरोह बंदी हो, और तौरात को खिलौना बना ले और अपनी मर्जी से एक्सरसाइज बुक बना ले, तो ली यसू व वजू हकुम। क्या आज अगर शऊर की आंख से देखें तो आज मुसलमान क्या पूरी दुनिया के ऊपर अल्लाह ने उनके चेहरों को छुपा नहीं दिया? आज तक कोई डॉक्टर साबित नहीं कर सका कि मास्क पहनने से जरासीम नहीं लगते, लेकिन सब पहन रहे हैं। जब रब के कहने पे हम बात नहीं मानते ना तो अल्लाह बंदों से मनवाता है। वो कहते ना कि फलां को जूते भी पड़े तो चिमारों के हाथों से, लेकिन उम्मीद है ऐसा रब को मैयर हम को, अल्लाह तुम पे अभी भी रहम कर सकता है। हाँ, लेकिन वैन ओ तुम मुदना, आज खबर है थर्ड वेव की। अल्लाह सुबहान ताला आपको मुझे इसमें सोचने का मौका देते हैं। कि इसका बातनी सबब तो देखो। देखिए लोग कहते हैं ये साजिश है, आपको क्या लगे? अगर ये वाकई साजिश है तो क्या नबी सल्लम के दौर में साजिशें नहीं होती थी? अल्लाह ताला तो कहते हैं ली युत्फी नूर अल्लाह ही बी अफवाहिहिम, ये अपने मुंह की फूकों से इस्लाम का नूर बुझाना चाहते हैं। अगर उस दौर की ये बात थी तो क्या अल्लाह साजिशों को मिटा नहीं सकता? अल्लाह तो बड़ी से बड़ी साजिश को मुंह की फूक कहता है, मगर आज चूंकि हम कमजोर हो गए तो इन चीजों पे पीछे हुए। असल बात यह है कि जब अल्लाह पूरी दुनिया को लगाम डालना चाहता है ना, तो ऐसी मिसालें बना देता है। ये सब हमारी तरबियत के लिए हो रहा है। लिखिए, एक साल का ट्रेनिंग सेशन दुनिया को दिया जा रहा है कि तुम नाफरमानियां करोगे, फिर हम भी तुम्हारे साथ फिर वही करेंगे। तुम जो भी करो लेकिन उसमें अल्लाह की मर्जी को जानो। तुम्हें अल्लाह ने मुसलिह बनाकर भेजा था, तुम्हें जिम्मेदारी दी थी, तुम जिम्मेदारी उठाओ। तुम्हें ये किताब दूसरों तक देने के लिए दिया था, तुमने जंतर मंतर बना दिया। कोरोना हकीकत है कि मजाज है, छोड़ दीजिए इस बहस को, कोई फायदा नहीं इससे। ये साजिश है, खुद बनाया गया है या बन गया या रिएक्शन था, छोड़ दीजिए इस बहस को। ये थर्ड वेव सेकेंड और फर्स्ट से खतरनाक है कि नहीं, छोड़ दीजिए इसको। जो मैं और आप कर सकते हैं वो अपने गुनाहों पर नुकेल डालनी है। अगर हमने गुनाहों पर नुकेल ना डाली तो गुज़श्ता रमज़ान की तरह ये रमज़ान भी खो जाएगा, और इसमें जो हमारे दीन का नुकसान होगा और पिछले सालों में हुआ उसको क्या करेंगे? आप देखिए कि अल्लाह ताला रमज़ान लेकर आता है गुनाहों की माफ़ी के लिए, एक रमज़ान दूसरे रमज़ान के लिए कफ़ारा। इस नुकसान को कैसे पूरा करें जो रमजान की इबादात में हम करते थे? अभी भी अल्लाह ने एक फर्ज को फर्ज के बराबर ही रखा है, लेकिन वो जो इज्तमाइयत का हुसन था वो किधर गया? और आप देखिए कि जो लॉकडाउन के नुकसान हुए हुकूमत ने पूरे किए, हर हुकूमत अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कर ही रही है ना। लिखिए एक जुमला, लोगों का दुनियावी नुकसान तो हुकूमत पूरा कर रही है, ये दीन का जो नुकसान हो रहा ये कौन पूरा करेगा? देखिए, एक नमाज 27 से ज़र्ब खाती है मस्जिद में जाकर पढ़ के इज्तमाइयत में, घर में पढ़ रहे हैं तो वो 26 किधर गई? एक जुमा दूसरे जुमे तक गुनाहों का कफारा, ये नुकसान कौन पूरा करेगा? लोगों के माली नुकसान हुकूमत पूरे करेगी, दीन का नुकसान कैसे पूरा करें? लिखिए हमारे करने के काम क्या करें। नंबर एक, इज्तमाई तौबा, पक्की सच्ची तौबा, वतूबू इलल्लाही, सब तौबा करो। जमीयन का लफ्ज आता है तौबतन नसूहा, दिल से रिग्रेट महसूस करके पक्की तौबा करे इंसान, क्योंकि अल्लाह ना चाहे ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि बच्चे, सारी दुनिया मिलकर तुझे तकलीफ देना चाहे और अल्लाह ना देना चाहे तो तेरा बाल का बीका नहीं कर सकता। लाख साजिशें हो जाएं, क्या रब्बुल आलमीन से आगे पहुंच के लोग ताकतवर हो गए? नहीं हुए। आज लोग कहते हैं दज्जाल के आने के हालात हैं, ये फ्री मेसन फलां फलां, बेकार बातें हैं। हमें इन सब को छोड़कर अपनी इसलाह करनी है, तो दूसरा काम लिखिए, गुनाहों से बचने की तौफीक मांगिए। बच्चे को मां सजा देना तो बच्चा फिर दो को दिन ठीक रहता है, फिर तीसरे दिन सबक भूलने लगता है, मां फिर उसको पकड़ के बांध देती है। हम सब भी इसको माने, सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि ये गलत है। तीसरी बात यह कि भूला हुआ सबक याद कीजिए, और सबक यही था कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की इसलाह के लिए निकाली गई। वापिस वही काम कीजिए जो हमें करना है, और फिर आपको मुझे जिस चीज की फिक्र होनी चाहिए वो कह के हम इतने आपको कैसे बेहतर करें। आप देखिए कि जब मुसलमान अपने आप को पाबंद नहीं कर सकते ना, तो अल्लाह को उनको बांधना आता है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, गालिबन सूरह फजर है या उसके इर्द गिर्द कहीं हम पढ़ते हैं कि हम फिर ऐसा बांधेंगे वसाक़हू अहद, हमें नूर की रोशनी में अपने हालात की इन वजूहात को समझना। आप बाहर नहीं अमल करवा सकते, घर के अंदर तो शरीयत को नाफिज करें। आप देखिए कि जब मुशरिकीन ने यहूद पर यह हमला किया था, जो हम सूरह बनी इसराइल की आयतें पढ़ रहे हैं, तो मुशरिकीन उनके ऊपर मुसल्लत हो गए। आज आप देखिए मस्जिदें हमारी, कवानीन दूसरों के। आज हम अपनी मस्जिदों में जाते हुए डरते, अपने इदारों में आते हुए डरते। ये हकीकत है कि कानून बाहर वालों का ही चल रहा है, अल्लाह का नहीं। जब अल्लाह कहता है कि चेहरा छुपाओ तो क्या करती हूँ मैं, ये सवाल लिखिए। जब अल्लाह कहता है एक गैर औरत से शेक हैंड नहीं करो तो मेरा क्या जवाब होता है? जब अल्लाह कहता है शादियों को सादगी से करो तो मेरा क्या जवाब है? ये सवाल जवाब कीजिए खुद से। और आप देखिए जब वबाएं और तकलीफें और मुसीबतें आती हैं ना, तो वो नूर फितरत हमें कहता है कि किसी के आगे झुको, तो लोग ऐसे वक्त में मस्जिदों का रुख करते हैं। कहते हैं ना कि मोमिन को तकलीफ आती है तो वो जिक्र शॉप की तरफ आता है, और फाजिर को आती है तो वो लीकर शॉप की तरफ जाता है। दुनियावी कवानीन की पाबंदी पे मजबूर हैं या इसको छोड़ने पर डर है कि फाइन लगेगा और जुर्माने होंगे, तो ये भी तो सोचिए कि अल्लाह के कवानीन को तोड़ने के क्या जुर्माने हमारे नाम पे पड़े हैं जो जाके वहां भुगतने हैं। कितनी राइनिंगें आई पड़ी हैं, कितनी वहां हमारे सर पे किस्तें पड़ी होंगी, और जो इबादतें छूटी उन पर रोइए, सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह लिखिए अगली बात, अपनी इबादतों के छूटने पर रोइए। सूरह स्वाद की आयत 30 से 32 में अल्लाह ने एक वाकया बयान किया है, वहबना अली दाऊद सुलेमान ने मलबद इन्नहु अवाब इज उरीद अलैहि बिल अशीज साफिनातुल जियात फकाल इन्नी अहबबतु हुब्बल खैर अन ज़िक्री रब्बी हत्ता तवारत बिल हिजाब। और दाऊद अलैहिस्सलाम को हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा बेटा अता किया, बेहतरीन बंदा, कसरत से अपने रब की तरफ रजू करने वाला। काबिले जिक्र है वो मौका जब शाम के वक्त वो इसके सामने खूब सुधे हुए तेज रो घोड़े पेश किए गए, तो उसने कहा, मैंने इस माल की मोहब्बत अपने रब की याद की वजह से इख्तियार की है, यहाँ तक कि जब वो घोड़े निगाहों से ओझल हो गए। यानी वाकया है इसके पीछे, आपने पढ़ा होगा, जिहाद की नीयत से बंधे हुए घोड़ों में मसरूफ हो गए और असर की नमाज चली गई तो उन सब की गर्दनों पे छुरी फेर दी। लिखी अपने लिए, मेरी कितनी बातें छुटती हैं और छुटी। जब सुलेमान की एक इबादत छुटी और वो भी कोई क्रिकेट मैच देखते हुए नहीं, जिहाद फी सबीलिल्लाह के घोड़ों की टेक केयर के लिए छुटी, मैं अपनी नमाजों के लिए कितनी परेशान हूँ। रुद्दू हाई लई, एक एक की गर्दनें काट दो। तो लिखिए, इबादत छुटने का गम करना है, फिर अपना मुहासबा भी करना है हमने कि हम इस दौर में क्या कर रहे हैं। और हजरत सुलेमान ने जब अपना मुहासबा किया था तो अल्लाह ने कह दिया था, सुलेमान अब तुझे वो मिलेगा जिसका हिसाब ही नहीं है। ये भी अल्लाह के फैसले होते हैं। जेल में रहकर इमाम इब्ने तैमिया से वो काम करवा लिया जो शायद जेल से बाहर ना करते, डिस्ट्रैक्शंस और दूसरी चीजों में। आप घरों को मस्जिदें बनाइए, लिखिए अपने कामों में से काम, जो इबादत बाहर जाके नहीं कर सकते उसको घर में कीजिए। तो अमल की बातों में लिखिए कि अल्लाह इस रमजान में गुनाहों से बचने की तौफीक मांगनी है, और जो तौफीक मांगेगा अल्लाह उसको देगा, जो नहीं मांगेगा उसको नहीं देगा। अगला अमल लिखिए कि जरूरत का एहसास दिलाइए लोगों को, सजा को सजा समझिए। न जाने हम में से कितनों का ये आखिरी रमजान हो। पिछले साल थे हमारे साथ उम्रे पे एक ब्रदर थे, जैसे निचोड़ो तो खून गिरता है, ऊंचे लंबे पठान, आज नहीं है। नहीं पता था उनको कि ये मेरा आखिरी रमजान है। नेमतों की कदर कीजिए इससे पहले कि ये छिन जाए। और सबसे बड़ी और आखिरी बात कि फितनों के दौर में नबी सल्लम की रहनुमाई पे अमल कीजिए। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आपने फरमाया, यानी नबी सल्लम ने, अन करीब फितने आएंगे, सतकून फितनुन, ऐसे फितने रूनमा होंगे कि अलकायदु फीहा खैरु मिन अलकायम, इनमें बैठ रहने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा, वलकायमु फीहा खैरु मिन अलमाशी, और खड़ा होने वाला चलने वाले से बेहतर होगा, वलमाशी फीहा खैरु मिन असाई, और इसमें चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा, मन तशर्रफ लहा तस्तशरिफ हु, जो शख्स इनकी तरफ नजर उठाकर देखेगा वो फितने इसे अपनी लपेट में ले लेंगे, फमन वजद मिनहा मलजम औ माजन फल युअज़िबहु। सही बुखारी की रिवायत का खुलासा है 7081। ऐसे हालात में जिस किसी को कोई भी जाए पनाह या तहफ्फुज़ की जगह मिल जाए वो इसमें चला जाए। और एक रिवायत जो कि मुसनद अहमद में 4286, उसमें आता है, वदखुल दारका, अपने घरों के अंदर रहो। और उकबा बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मन निजात, निजात क्या है? तो मैंने पूछा अल्लाह के नबी से, किस चीज में निजात है? तो आपने फरमाया, अमसिक अलैक लिसानक, अपनी जुबान को अपने काबू में रखो, यानी फालतू और बेकार ना बोलो। इसी तरह वल यसक बैतुक, और अपने घर में पड़े रहो, यानी तुम्हें तुम्हारा घर काफी हो। और वब की अला खतीयतिक, तिरमिजी की रिवायत है 20, और अपने गुनाहों पर रो। इसी पे मैं भी आपको छोड़ती हूँ। यह आपको हदीस इस सोच के साथ सुनाई गई कि आज जो चीज़ अल्लाह के नबी ने कह दी उस पर अमल कीजिए। ये उछलने कूदने का वक्त नहीं है, ये जज्बात में आने का वक्त नहीं, ये संजीदगी का वक्त है। तो बिला वजह अपने आप को फितनों में नहीं डालना। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब से राजी हो और हमें राजी कर दे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।